यशया अध्याय पांच। अध्याय पांच में यहोवा दाख की बारी का दृष्टांत सुनाता है, जिसमें वो यहूदा और इसराइल की तुलना दाख की बारी से करता है। यशया अध्याय पांच पद एक और दो। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर। आप में से अनेक जानते होंगे कि पहाड़ों पर किस प्रकार मिट्टी खोदकर पत्थर निकालते हैं तथा उन्हें चुनकर सीढ़ीदार खेत तैयार किया जाता है। यशया अध्याय पांच पद दो में आगे लिखा है, उसमें उत्तम जाति की दाखलता लगाई, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। वहां आज भी ये गुम्मट देखने को मिलते हैं। ये गुम्मट रखवाली के लिए बनाए जाते थे कि कोई फसल की चोरी न करे। इनके नीचे रहने के लिए घर बना होता था। वे गर्मियों के दिनों में जब शहरों से निकलकर अपने खेतों में छुट्टियां बिताने आते थे, तब इन मकानों में वे रहते थे। वे यहां अपनी फसलें भी जो भी लगाई हो उगाते थे और वहीं रहकर उनकी देखभाल करते थे। अतः उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। यशया अध्याय पांच पद दो और तीन। और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा, तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाके ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। अब आप ही निर्धारित करो, आप ही न्याय करो। यशया अध्याय पांच पद चार। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है, मैं अपने लोगों के लिए इससे अधिक और क्या कर सकता था। मैं उन्हें यहां लाया, उन्हें यहां अपने पैरों पर खड़ा किया, नगर निर्माण में उनकी सहायता की, कृषि में उनको स्थापित किया, मैंने उनके लिए सब कुछ किया। ऐसा क्या रह गया था जो मैंने ना किया हो? तुम स्वयं न्याय करो। यशया अध्याय पांच पद चार से लेकर सात तक। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की, तब उसमें निकम्मी दाखे लगी? अब मैं तुमको जताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चट की जाए, और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इसराइल का घराना और उसका मन भाव पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। परमेश्वर अपनी दाख की बारी में फल खोज रहा था। आपको ध्यान होगा, यीशु ने कहा था, यूहन्ना 15 अध्याय पहला और दूसरा पद, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। यदि आपको अक्टूबर माह में इसराइल के एशकोल क्षेत्र में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, जहां संसार के सबसे अच्छे अंगूर उगाए जाते हैं, तो आप वहां देखेंगे कि दाखलता भूमि पर ही फैलाई जाती है। उनको केवल चट्टानों का सहारा मिलता है। दाखलता कहीं कहीं पर जाली पर भी फैलाई जाती है। जब उनमें अंगूर लगते हैं तो वे भूमि पर ही रहते हैं। इसके बाद वे उन्हें धोकर चट्टानों पर या किसी और सहारे पर रखते हैं जिससे कि उनका विकास अच्छा हो, अन्यथा उनमें कीड़े लग जाते हैं। यीशु के कहने का अर्थ यही था कि परमेश्वर फलवंत विश्वासी को इसी प्रकार संभालता है कि उसके फलों का अच्छा विकास हो। अब सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। अब यीशु ने कहा, यूहन्ना 15:3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अर्थात वचन हमें धोकर सवारता है कि हमारे फल अच्छी तरह विकसित हो। मेरे जीवन में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? फल लाना। वो इसराइलियों से क्या चाहता था? वे फल लाए। उसने उनके लिए सब कुछ क्यों किया था? क्योंकि उन्हें अच्छे फल लाने थे। परमेश्वर हमारे लिए इतना सब क्यों करता है? केवल इसलिए कि हम अच्छे फल लाए। यूहन्ना 15:8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर की यही एक मनोकामना है। इसलिए परमेश्वर अपनी दाख बारी में आया और उसने फलों की खोज की। देखिए ये कैसी मनोहर बात है कि यीशु ने अपनी कलीसिया को भी दाखलता कहा है। यीशु ने नई आज्ञा दी कि हम परस्पर प्रेम रखें, और वो प्रेम को उस फल से जोड़ता है जिसकी परमेश्वर खोज कर रहा था। इसके प्रकाश में पौलुस का कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, गलातियों 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम है। परमेश्वर हम में प्रेम की ही तो खोज कर रहा है, क्योंकि इससे ही सच्चे न्याय और निष्पक्षता का उद्गम होता है। यदि आपके मन में प्रेम भरा है तो आप किसी पर अत्याचार कभी नहीं करेंगे। पुराने नियम में ये लिखा है, धार्मिकता का न्याय करो कि कंगाल पर अत्याचार न हो। नए नियम में इसको सकारात्मक रूप से लिखा गया है, अपने पड़ोसियों से अपने बराबर प्रेम रख। ऐसी अवस्था में कौन किसी को दुख देगा? हम सब एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे को ऊपर उठाएंगे, गिरे हुओं को सहारा देंगे, एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। आज परमेश्वर हमारे जीवन में और अपनी कलीसिया में प्रेम खोज रहा है, क्योंकि वो स्वयं प्रेम है। इस प्रेम का परिणाम होगा गिरे हुओं को सहारा देना, एक दूसरे के बोझ को बांटना। इस प्रकार ही हम यीशु की आज्ञा की पूर्ति करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से इसी फल की आशा बंधे हुए हैं। इसके विपरीत है स्वार्थ। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है जिसका हमें निवारण करना है। हम आत्मकेंद्रित है, हम स्वार्थी है, हमें अपना अपना ही सूझता है। हम उस सीमा तक ही देते हैं जिस सीमा तक हमें पीड़ा न हो। परमेश्वर अपनी दाख की बारी से प्रेम के फल की आशा रखता है। परमेश्वर अपनी दाख की बारी में फल एकत्रित करने आता है। यदि उसे वहां जंगली फल प्राप्त हुआ तो वो उस दाख की बारी को वीरान छोड़ देगा। वो उसके बाड़े को गिरा देगा और उसे बैरी द्वारा रौंदे जाने के लिए छोड़ देगा। वो उसे त्याग देगा। अब परमेश्वर इसराइल पर 6 देता है। यशया 5:8, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता कि तुम देश के बीच अकेले रह जाओ। जैसे शहरों और गांवों में आजकल की स्थिति है। यशया 5:9, सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे। संपूर्ण देश में फसल नहीं होगी, भूमि फलहीन हो जाएगी। यशया अध्याय 5:10। क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीच से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। अकाल की भविष्यवाणी यशया अध्याय 5:11। दूसरा हाय, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाक मधु पीते रहते हैं। ये एक शराबी का वर्णन है। 11 के अंत में लिखा है, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। एक पियकड़ की दिनचर्या यही होती है कि वो मदिरा पिए बिना अपना दिन आरंभ नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति शराबी कहलाता है। यशया अध्याय 5:12। उनकी जीवनारों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसली और दाकमधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। लोग अपने राग रंग में मस्त रहते हैं, वे जीवन में परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं। यशया अध्याय 5:13। इसलिए क्योंकि वे राग रंग में समय बर्बाद करते हैं, वे परमेश्वर को समय नहीं देते, इसलिए वे बंधुआई में जाएंगे। यशया अध्याय 5:13-17। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूख को मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका विभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सबके सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं और अभिमानियों की आंखें नीची की जाती है, परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्ट पुष्टों के उजड़े स्थान परदेशियों को चराई के लिए मिलेंगे। अगली हाय यशया अध्याय 5:18। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच लेते हैं। पाप इतना अधिक हो गया है कि उसे खींचने के लिए बहुत मोटी रस्सी की आवश्यकता है। यशया अध्याय 5:19। जो कहते हैं वो फुर्ती करें और अपने काम को शीघ्र करें कि हम उसको देखें और इसराइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वो निकट आए कि हम उसको समझे। वे परमेश्वर को और परमेश्वर के न्याय को चुनौती देते हैं। यदि परमेश्वर है तो वो कुछ करता क्यों नहीं कि हम जाने कि वो जीवित परमेश्वर है। अगली हाय यशया अध्याय 5:20। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो परमेश्वर की सृष्टि में विश्वास करते हैं वे उन्हें मूर्ख कहते हैं। यशया अध्याय 5:20 में आगे लिखा है, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज हम उस युग में वास कर रहे हैं जिसमें भले को बुरा और बुरे को भला कहा जाता है। यदि कोई किसी उचित एवं नैतिक बात के लिए खड़ा होता है तो समाचार पत्र उसका ठट्टा उड़ाते हैं। समलैंगिकों को ही देखिए, वे अपना अधिकार पाना चाहते हैं और समाचार पत्र इसे भला काम कहते हैं। वे अपना ही वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। उनके अपने ही विकृत नैतिक मानदंड है। यशया अध्याय 5 पद 21। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है, वे जो परमेश्वर के ज्ञान में ना रहकर अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जिनके मानदंड परमेश्वर के ना होकर अपने ही है। छठी और अंतिम हाय पद 22 और 23। हाय उन पर जो दाकमधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। परमेश्वर यहां कानून बनाने वालों और न्याय करने वालों के लिए कह रहा है। अनुचित निर्णय देकर वे रिश्वत लेते हैं और अपना राग रंग और मदिरा पीने पर व्यय करते हैं। वे करेंगे भी क्या? अपने विवेक से बचने के लिए वे नशा करते हैं, और जब अकेले बिस्तर पर लेटे तो उन्हें अपने कुकर्म ध्यान न आए। यशया अध्याय 5 पद 24 और 25। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इसराइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है, और पहाड़ कांप उठे और लोगों की लोथें सड़कों के बीच कूड़ा सी पड़ी है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। परमेश्वर ने दंड दिया, परंतु अभी वो पूरा नहीं हुआ है। यशया अध्याय 5 पद 26 से लेकर 29 तक। वो दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो, वे फुर्ती करके वेग से आएंगे, उनमें कोई थका नहीं, ना कोई ठोकर खाता है, कोई ऊंगने व सोने वाला नहीं, किसी का फेंटा नहीं खुला और किसी के जूतों का बंधन नहीं टूटा। उनके तीर छोके और धनुष चढ़ाए हुए हैं, उनके घोड़ों के क्रूर वज्र के से और रथों के पहिए भावंडर सरीके हैं। वे सिम, वो जवान सिम की नाई गरजते हैं, वे गुर्राकर आहेर को पकड़ लेते और उसको ले भागते हैं, और कोई उसे उनसे नहीं छुड़ा सकता। यहूदा और यरूशलेम के निवासी बंधुआई में बाबुल में ले जाए गए। यशया अध्याय 5 पद 30। उस समय वे उन पर समुद्र के गर्जन की नाई गरजेंगे, और यदि कोई देश की ओर देखें तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा और ज्योति मेघों से छिप जाएगी। ये यशया के संदेश का आरंभ तथा परमेश्वर के न्याय की घोषणा का आरंभ था। सुरंग के अंत में प्रकाश होता है। जब परमेश्वर दंड दे देगा तब महिमा का राज्य आएगा। आने वाले अध्यायों कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां देखने को मिलेंगी, जिसमें हमें हमारे मसीह के आने का प्रकाशन प्राप्त होगा। वहां यशया उसके विषय भविष्यवाणी देता है, जिसे परमेश्वर भेजेगा कि वो धार्मिकता का राज्य स्थापित करे और पृथ्वी पर धार्मिक न्याय की स्थापना करे। इस अध्ययन से आप पर एक या दो प्रभाव पड़ सकते हैं, और ये सब निर्भर करता है कि आप क्या है। यदि आप धार्मिकता के अधीन आशीष का कारण है तो आप भूमि के फल खाएंगे। दुष्ट पर हाय, आप सोचते हैं कि समय बड़ा बुरा आ गया है। नहीं, समय और भी बुरा आएगा। हमारी आशा कैसी महान है कि हम अपने परमेश्वर और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की महिमा में आने की प्रतीक्षा करते हैं। जब वो आएगा तो हमारी निकम्मी देह को अपने महिमामय रूप में परिवर्तित कर देगा। यशया अध्याय 26 में वो उसके प्रकोप के उंडेले जाने के समय अपने लोगों को छिपाने की प्रतिज्ञा देता है। न्याय के तुरंत बाद ही उसके राज्य में आप सहभागी होंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, वो क्यों कर आपकी ताड़ना करें? आपको लौट आने में क्या हानि है? यदि आप परमेश्वर को अवसर प्रदान करें कि जो कुछ आपके लिए करना चाहता है करें, तो आपको क्या परेशानी है और उसके प्रेम के प्रति सचेत होने में आपको क्या हानि है? यद्यपि आपके पाप लाल है तो भी वो हिम की नाई उजले हो जाएंगे। परमेश्वर तो आपके समस्त पापों और अपराधों से आपको धो देना चाहता है। वो तो आपको नया मनुष्य बनाने के लिए तैयार है। वो तैयार है, ये काफी नहीं, आपको भी तैयार रहना है। यदि आप तैयार हैं, तो घुटनों पर गिरकर परमेश्वर से कहिए, हे प्रभु, दया कर मुझ पापी पर। वो निश्चय ही दया करेगा। यदि आपके पाप लाल है तो भी आप हिम की नाई उजले हो जाएंगे।